उपस्थित महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, हम सभी साधक भाई बहनों के सामने आज वर्तमान में एक प्रश्न है कि हम किस स्तर के साधक हैं, वहीं से अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। सबसे पहली बात जो मुझे सूझती है वह यह है कि पहले मनुष्य के व्यक्तित्व में शुद्धि आती है, फिर जब उसके भीतर से असत के संजनित विकारों का नाश हो जाता है, तब उसके शुद्ध अहम में वह अलौकिक परिवर्तन होता है कि जिस परिवर्तन के फल स्वरूप अनंत की विभूतियों से वह अभिन्न होता है। यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अनेकों प्रकार की अशुद्धियों को रखते हुए असत के संग जनित सुख के प्रलोभन को रखते हुए आई हुई अनुकूलता के सुख को भोगते हुए हम सब लोग भगवत भजन करना चाहते हैं, भगवत भक्त होना पसंद करते हैं और उसके लिए विधियात्मक अनेकों साधनों का अनुसरण करने लगते हैं, तो दोनों ही चीजें जीवन में चलती रहती हैं। एक ओर किया हुआ भजन ध्यान भी चलता रहता है और दूसरी ओर अपने आप से होने वाला विषय चिंतन भी चलता रहता है, लोभ और मोह का आक्रमण भी होता रहता है। इस प्रकार का एक मिश्रित जीवन चलता है। थोड़ा थोड़ी देर शाम होकर बैठ भी गए, थोड़ी देर भजन भी कर लिया, थोड़ी देर पूजा भी कर ली, थोड़ी देर और किसी प्रकार का अभ्यास भी कर लिया और फिर वहां से उठे तो विविध प्रकार के कार्य भी लग जाने पर क्रोध से प्रेरित भी हो रहे हैं, लोभ से प्रेरित भी हो रहे हैं, मोह से प्रेरित भी हो रहे हैं, दीनता और अभिमान से आक्रांत भी हो रहे हैं और फिर 12 घंटे का 10 घंटे का समय बीत गया तो संध्या समय रात्रि में सोने से पहले कुछ देर के लिए साधकपन के साधना भी कर रहे हैं। ऐसी दशा रहती है कि नहीं? ये रहती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जिन भाई बहनों के जीवन में थोड़ी बहुत विधियात्मक साधना का अभ्यास है, उसके प्रति निष्ठा है कि उसमें अभिरुचि है, तो वे भाई बहन अपनी की हुई साधना को छोड़े नहीं। मानव सेवा संघ की प्रणाली में स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को सुझाव दिया कि असाधन का नाश किया जाता है साधन की अभिव्यक्ति होती है, व्यर्थ चिंतन का नाश किया जाता है, सार्थक चिंतन होता है, विषय चिंतन का त्याग किया जाता है, भगवत चिंतन होता है। तो ध्यान होने की चीज है, भगवत चिंतन होने वाली बात है, करने वाली बात क्या है? तो करने वाली बात यह है कि मेरी जिन जिन भूलों से जीवन में अनेकों विकार उत्पन्न हो गए, उन भूलों का त्याग मैं करूं। तो मेरा पुरुषार्थ है अपने असत जाने हुए असत के संग का त्याग, ये मेरा पुरुषार्थ है, और अपनी की हुई भूलों को अपने जाने हुए असत के संग का त्याग जब हम मिटा देते हैं, की हुई भूलों को छोड़ देते हैं, असत के संग का त्याग कर देते हैं, तो अपना पुरुषार्थ पूरा हो गया। फिर क्या होगा कि अहम रूपी अणु में जो अशुद्धियां उत्पन्न हो गई हैं, उन अशुद्धियों का नाश होता है। तो अशुद्धि का नाश ये पहली बात है। अब आप कहेंगे कि भाई मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है कि अपनी अशुद्धि का नाश हम अपने से करें, मेरा तो संकल्प का बल इतना दुर्बल हो गया है कि इस शुभ संकल्प में भी ताकत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, सुख भोग की प्रवृत्तियों को प्रश्रय देने से व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है, अपनी आदतों से अधीन हो जाता है, और बहुत सी बातों को गलत जानते हुए भी उसको छोड़ने की इच्छा रखते हुए भी छोड़ने में चूक जाता है। ऐसा भी कभी कभी होता है, किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है। तो क्या होगा उसका? क्या उसके लिए रास्ता बंद हो गया विकास का? मानव सेवा संघ से सलाह लीजिएगा तो संत के वचन से आपको सहारा मिल जाएगा। क्या सहारा मिलेगा कि अगर ऐसी ही दशा तुम्हारी हो गई कि भूतकाल की भूलों के प्रभाव से अहम रूपी अणु में अर्थात मुझ में इतने विकार उत्पन्न हो गए हैं कि अपने ही में अब सामर्थ्य नहीं है कि उनको हम मिटा सकें, अगर ऐसी दशा हो गई है तो भी निराश होने की बात नहीं है। तब क्या करना चाहिए? तो मत देखो अपनी भूलों को और मत डरो अपने अपराधों से, निराश मत हो अपनी दुर्बलता से। क्यों? क्योंकि सर्व सामर्थ्यवान तुम्हारे नाथ हैं, सर्वज्ञ परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्षमा सिंधु तुम्हारे हितैषी हैं, सहायता देने वाले हैं। इस कारण से निराश हुए बिना ही अपनी सारी दुर्बलताओं के साथ अपने सब विकारों को देखते हुए भी उस सामर्थ्यवान की शरण में आ जाओ। अधीर होकर एक बार पुकार कर कह दो, हे समर्थ, मैंने अपनी ही भूलों अपनी दुर्दशा कर लिया है, अब आप अपनी कृपा से मुझे उबारे। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि नहीं? एक कर सकते हैं तो दो बातें हो गई। एक तो यह बात हो गई कि विवेक के प्रकाश में अपनी की हुई भूलों को देखा जाए और अपने द्वारा उनका त्याग किया जाए। तो जब अशुद्धि मिट जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे सामर्थ्यवान साधक संसार में हुए, अभी भी हैं, जिन्होंने सत्संग के प्रकाश में इस बात को जान लिया कि मेरा जीवन सुख भोग के लिए नहीं है, सुख दुख के पार अनंत आनंद के लिए है, परम प्रेमास्पद प्रभु को प्यार करने के लिए है। ऐसा जिन्होंने सत्संग के प्रकाश में संत के संपर्क में निश्चय कर लिया, उन्होंने असत के संग का त्याग कर दिया। ऐसे साधक भी हुए और ऐसे साधक भी हुए कि जो त्याग करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, जो निर्विकार होना चाहते हैं और अपने ही बनाए हुए विकारों से हार जाते हैं, ऐसे साधक भी हुए। तो अनुभवी संत जनों ने सलाह दी कि जितनी सामर्थ्य तुम्हारे में बच गई है उतनी सामर्थ्य को लेकर तुम सतपथ पर आगे बढ़ो। जहां तुम अनुभव करोगे कि अब मेरा बस नहीं चलता, अधीन होकर परम कृपालु की कृपा का सहारा पसंद करोगे तो उसी समय करुणामय की करुणा का दरवाजा खुल जाएगा। बीच का एक ये भी रास्ता हो गया, एक ऐसा सामर्थ्यवान जिसने निश्चय पूर्वक सब बुराइयों का त्याग कर दिया, एक ऐसा असमर्थ जो कुछ भी नहीं कर सकता है तो अधीन होकर सर्वसम्मत की शरण में अपने को डाल दिया, एक दोनों के बीच की दशा जिसमें मैं अपने को रखती हूँ। आप में से भी बहुत से भाई बहन अपने को उस बीच दशा में ही पाएंगे कि बिल्कुल ही असमर्थता भी नहीं है और इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि एकदम अपने पुरुषार्थ से सब रहित हो जाए। तो दोनों के बीच में सामर्थ्यवान और घोर असमर्थ, दोनों के बीच में हम लोग अपने को पाते हैं। अगर बिल्कुल असमर्थ होते तो किसी प्रकार के सुख भोग की प्रवृत्ति में शामिल भी नहीं हो सकते थे। जी नहीं हो सकते थे कि धन कमाने और मान बढ़ाई प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति में उलझ जाए, ये भी नहीं हो सकता था। अगर असमर्थ होते तो थोड़ी थोड़ी सामर्थ्य हम लोगों में बची हुई है, बिल्कुल असमर्थ नहीं है और पूरी तरह से समर्थ भी नहीं है। तो ऐसी बीच की दशा वाले साधक जो हैं उनको ये सलाह दी गई कि तुम प्रातः काल सोकर जगते ही सबसे पहले व्यक्तिगत सत्संग करो। अब ये मैं संप्रदाय मत मजहब देश युग परिस्थिति सबके पास जो मानव मात्र के जीवन के कल्याण के लिए साधना है उसका विवरण आपको दे रही हूँ इस आशा से कि सत्संग समारोह में जो भाई बहन आए हैं वे तत्काल इसी समय कदम उठाना चाहें तो उनके सामने राह दिखाई देनी चाहिए। इसलिए यह बात मैं निवेदन कर रही हूँ पत्र पुष्प के रूप में आपकी सेवा में अर्पण कर रही हूँ, क्योंकि मुझको यही निष्ठा दी गई कि श्रोता के रूप में भाई बहन जो बैठे हैं वे भी गैर नहीं है, कोई और नहीं है, प्रेमास्पद ही है जो मेरे वक्ता होने का राग मिटाने के लिए श्रोता बनकर बैठे हैं। तो श्रोता भगवान के चरणों में पत्र पुष्प अर्पण करना है मुझे, तो पवित्र होना चाहिए, हितकर होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो ये सुंदर पवित्र सुगंधित पत्र पुष्प आपकी सेवा में अर्पित है। वो क्या है कि किसी भी मत के मानने वाले हैं, किसी गुरु से मंत्र दीक्षा ली हो आपने, किसी संप्रदाय में दीक्षित हुए हो, कुछ भी आपकी साधना रही हो, आपका कल्याण अभीष्ट है मानव सेवा संघ को। तो मानव सेवा संघ के प्रणेता सुनत ने संघ की रंगभूमि के रूप में माँ धरित्री को प्रस्तुत किया। जैसा भी साधक होगा उसके कल्याण के लिए उसके लिए आवश्यक तत्व कुछ मिलना चाहिए। तो यह परम आवश्यक तत्व है कि प्रातः काल सोकर जगते ही तत्काल आप आंख मुंह धोकर के शांत होकर के बैठ जाइए और व्यक्तिगत सत्संग कीजिए। व्यक्तिगत सत्संग में क्या करेंगे कि पहले अपना लक्ष्य याद कीजिए, आज जो सवेरा हुआ है और जिस दशा में मेरी आंखें खुली हैं, तो अब रात्रि में आंखों को बंद करके निद्रा की जड़ता में डूबने से पहले अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा तिल के बराबर भी आगे बढ़ना है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में एक ईसाई मत के बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, तो उनसे बात हो रही थी स्वामी महाराज की। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी प्रार्थना के बारे में कुछ कहिए। तो महाराज जी ने कम से सुनाया उनको। अब हम लोग जो बीच में दुभाषीय बैठते थे, हिंदी का अंग्रेजी करने, अंग्रेजी का हिंदी करने, वो कितना गलत सलत करते थे तो कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश करके पूरी तरह सुनाया उनको। तो सुन लिया उन्होंने। तो वे सज्जन अपने संबंध में कहने लगे कि स्वामी जी महाराज, हम लोग जब प्रातः काल सोकर जगते हैं तो परमात्मा को प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि परमात्मा से कुछ मांगे। परमात्मा से प्रार्थना हम लोग इसलिए करते हैं कि जो कुछ उन्होंने दिया है उसके लिए पहले उनको धन्यवाद दो। बहुत अच्छी लगी बात मुझे। तो कहते हैं कि ईसाई मत के अनुसार आंखें खुलती हैं तो हम प्रार्थना करके कहते हैं पिता से, ईसा मसीह ने बाप माना था, तो ईसाई लोग सब लोग परमात्मा को बाप मानते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग प्रातः काल उठ करके पिता से कहते हैं कि हे पिता, आज आंखें मेरी खुली तो आपने मुझे सूर्य का प्रकाश देखने को दिया, तो आज का दिन मेरे लिए नया दिन हो, आज का दिन मेरे लिए नव जीवन का दिन हो। और हे प्यारे, जब तक तुम्हारा प्रेम न पाऊं, ये नया नया दिन आता ही रहे। तुमने तो आज मुझको एक सवेरा देखने को दिया जिसमें कि मैं आगे बढ़ सकूं, इसके लिए तुमको बारंबार धन्यवाद। मेरी डायरी में लिखा हुआ है, बातचीत हो रही थी, स्वामी महाराज ने सुनाया, उन्होंने सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं तो मांगते नहीं है, पहले तो जितना उन्होंने दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। अपनी परंपरा में तो पता नहीं कहां से ये भूल समा गई कि आदमी युवावस्था में सोचता है कि ये अवस्था तो मुझको सुख भोगने के लिए मिली है, और जब वृद्धावस्था आ जाएगी, जब किसी प्रकार के सुख भोगने के लायक नहीं रहेंगे, तब पुरुषार्थ कर लेंगे परमार्थ का। तो सोचो तो सही, सुख भोग जैसी नीची से नीची स्थूल प्रवृत्ति के लायक तुम नहीं रहोगे तो परमार्थ जैसे उत्तम प्रवृत्ति के लायक कैसे रहोगे। सोचिए, जिस युवावस्था में धन कमाने की सामर्थ्य है, समाज से संपर्क बनाने की सामर्थ्य है, काफी अपने में शक्ति मालूम होती है, उस शक्ति काल में अगर असत्य के संग पर विजय पाने का पुरुषार्थ आरंभ नहीं करोगे तो शक्तिहीनता में ये काम कैसे हो जाएगा। तो यह पुरुषार्थ जो है जीवन का, वो प्रारंभिक काल से ही आरंभ होना चाहिए। इस भ्रम में कभी मत रहना कि युवावस्था जो है वो सुख भोगने के लिए है, जो नहीं करना हो चाहिए उसको करने के लिए है, और वृद्धावस्था आ जाएगी जब किसी काम के लायक नहीं रहेंगे तो परमात्मा को पकड़ लेंगे, ये नहीं होने का। परमात्मा से मिलने का, नित्य योग से अभिन्न होने का, तत्व बोध से अभिन्न होने का, परमात्मा के परम प्रेमी होने का पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि जो आज इसको आखिरी क्षण के लिए रख दिया जाए। तो आखिरी क्षण के लिए नहीं रखना है, सबके लिए है। प्रातःकाल जैसे ही आंख खुले, खुला कर लीजिए, आंख धो लीजिए और बैठ जाइए जहां सो रहे थे वहीं पर, उसी बिस्तर में शांत होकर के व्यक्तिगत सत्संग कीजिए। तो पहली बात क्या होगी कि अपने लक्ष्य को याद कर लो, आज सवेरा हुआ है, प्रभु का दिया हुआ जीवन का एक नया दिन आज मुझको मिला है, तो आज मैं दिन भर इस प्रकार से चलूं संसार में कि संध्या होने से पहले हमारे जीवन में परमार्थ के पक्ष में कुछ प्रगति हो, पहले ही याद कर लो। अब दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात याद कर लीजिए कि अब देखें कि जो नहीं करना चाहिए तो करना मैंने छोड़ दिया क्या, छोड़ दिया है तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा से कृपा की भिक्षा मांग लीजिए। हे प्यारे, आपके नाम पर आपके आपकी प्रीति होने के लिए मैंने ये व्रत लिया है कि जो नहीं करना चाहिए तो नहीं करूंगा, तो हे समर्थ आप मेरी सहायता कीजिए, असमर्थता के क्षणों में मेरा हाथ पकड़कर उबा दिए। ऐसा होता है, सोच विचार करके ठीक ठीक काम करने के लिए आदमी चलता है और बीच रास्ते में कहीं प्रलोभन ने दबा लिया, कहीं भय ने दबा लिया, तो पहले का किया हुआ निश्चय खास मौके पर बदल गया, आदमी थोड़ा खिसक जाता है। ऐसा ही होता है। तो ऐसे क्षणों के बचाव के लिए ये भी मैंने क्रिश्चियनिटी की प्रार्थना में से सीखा। हमारी लड़कियों ने, स्टूडेंट्स ने सुनाया मुझको कि हम लोगों की प्रार्थना में एक पंक्ति ये भी होती है कि हे प्रभु, हे समर्थ, प्रलोभन की घड़ी में मुझको संभालना। तो सदैव का निश्चय किया हुआ, परमात्मा से उसी समय प्रार्थना कर लीजिए अगर आप परमात्मा को मानते हैं तो। और मैं इसी दृष्टि से बोलती हूँ कि हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं प्रायः सभी परमात्मा के मानने वाले ही हैं, कोई लाई कोई होगा जो न मानता हो, इसलिए उसकी चर्चा में छोड़ देती हूँ विचार करती। तो प्रार्थना कर लीजिए, ऐसा दिखाई देता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, जो नहीं करना चाहिए सो करना मैंने छोड़ दिया। तो मेरा ऐसा अनुभव है अन्य संतों, भक्तों और साधकों के जीवन को मैंने सुना है, देखा है, विवेचन किया है, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि जो नहीं करना चाहिए सो नहीं करूँगा, ऐसा निश्चय आपने किया तो हो सकता है कि निश्चय करते समय सत्य के प्रकाश में आपने अपनी दुर्बलताओं को नहीं देखा, उत्साहित होकर के निश्चय कर लिया, परंतु उसका पालन करने की शक्ति उस समय आपके पास है नहीं। ऐसा हो सकता है, फिर भी यह जीवन का मंगलमय विधान है, दुर्बल व्यक्ति भी सत्य के भरोसे, परमात्मा के भरोसे सत्यपथ का कोई व्रत ले लेता है तो सत्य स्वयं ही उसकी रक्षा करता है, उसको शक्ति देता है और प्रलोभन के क्षणों में उसके कदम को आगे बढ़ा देता है। ऐसा भी होता है। ठीक जिस समय लोभ आपको आक्रांत करने वाला होगा, कदम पीछे हटने वाला होगा कि अच्छा चलो आज ऐसे ही गलत सलत कर लेते हैं, आज का काम तो हो जाए, कल से फिर नहीं करेंगे, ह्यूमन वीकनेस है भाई, दुर्बलताएं हम लोगों में नहीं होती तो फिर तो हम और परमात्मा एक ही होते। इन्हीं छोटी मोटी दुर्बलताओं के कारण भी सज्जन पुरुषों का, अच्छी निष्ठा वाली माताओं बहनों का कदम जो है वो साधना के पथ पर जगह जगह पर अटक अटक के रह जाता है। तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि आपने सत्य के नाम पर, परमात्मा के नाम पर अगर व्रत ले लिया तो अपने बल से नहीं, वो सत्य ही आपका साथ देगा, परमात्मा ही आपका साथ देगा और कठिन घड़ियों में आपको पार करा देगा। इसलिए ये दूसरा काम ये करो। उसके बाद ईश्वर विश्वासी आप हैं तो थोड़ी देर के लिए अहम शून्य होने का साधन अपनाइए। वो अहम शून्य होना कैसे होता है कि अनंत परमात्मा की शरण में अपने को डालकर समर्पण योग में रहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है, प्रभु की कृपा शक्ति की गोद में विश्राम लीजिए। तो भीतर में जो भी कुछ रहा होगा भूतकाल की भूलों के प्रभाव से, जो भी कुछ बना हुआ होगा, अगर आधे मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, दो तीन मिनट के लिए भी बिल्कुल शांत और निरीह बालक की तरह जगत जननी माँ की करुणामयी गोद में अपने को छोड़ सकेंगे, तो महाराज जी ने मुझको आश्वासन दिया कि थोड़े से थोड़े समय में कृपालु की कृपा शक्ति जितनी सफाई तुम्हारी कर देगी उतना तुम वर्षों के अभ्यास में नहीं कर पाओगे। ये एक रहस्य है जीवन का। तो जितनी देर शांति से रहा जाए, घड़ी मत देखिए, समय बांधने की जरूरत नहीं है, करुणा सागर अपनी करुणा का विस्तार करके हमारे जैसे सभी प्राणियों का रक्षण पोषण कर रहे हैं, संभाल रहे हैं।